शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं दुनिया में है साइंस पावर और तुम्हारा है साइलेंस पावर, और कितना अंतर है दोनों में वो बाबा बताते हैं। साइंस पावर से विनाश होता है क्योंकि वो साइंस के अति में जाते हैं। उस समय अमेरिका रशिया बहुत अति में गए थे, चंद्रमा पर जाना है ये होड़ लगी थी, और बाबा कहते वहां कुछ भी रखा नहीं है, केवल वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, बाबा ने उसी समय कहा था। तो वो साइंस पावर विनाश लाएगी और तुम्हारी है साइलेंस पावर, और साइलेंस पावर क्या करती है, नई दुनिया की स्थापना करती है। तो साइंस पावर और साइलेंस पावर का कितना कॉन्ट्रास्ट है वो आज बाबा ने बताया। पर इस साइलेंस पावर का आधार क्या है? साइलेंस पावर का आधार है पवित्रता, क्योंकि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। तो जब तक पवित्रता नहीं है तब तक सुख और शांति इस दुनिया में नहीं आ सकती। और क्यों पवित्रता जरूरी है वो भी बाबा ने बताया, क्योंकि अभी स्थापना हो रही है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना कर रहे हैं। तो कैसे ब्रह्मा रचयिता बनता है, तो एक ही रचयिता है और उसके ही बच्चे हैं, तो जरूर आपस में भाई बहन हो गए, अंडरस्टूड है। एक ही पिता है तो उनके बच्चे आपस में क्या होंगे, भाई बहन ही होंगे। इसीलिए बाबा पवित्रता पर इतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि इसी पवित्रता के आधार से नई दुनिया की स्थापना होगी, नई रचना इस पवित्रता के बल से ही होगी, और उसी पवित्रता के आधार से सुख और शांति भी इस दुनिया में आएगी। तो आज की बाबा की मुरली इसी पर है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 4/6/2025 है, मीठे बच्चे। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि साइलेंस पावर कैसे आएगी, पवित्रता से तो आएगी, लेकिन वो पवित्रता भी कैसे आएगी, जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। तो भगवान की इस समय जो श्रीमत मिलती है इसके आधार से हमारे जीवन में पवित्रता आती है, उसी से ही सुख शांति की दुनिया की स्थापना होती है। तो मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो, दुनिया साइंस की अति में जाती है और हम बच्चे साइलेंस की अति में जाते हैं। तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो, तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, और वो शांति शांति मांगते रहते, शांति देवा शांति देवा, और तुम्हें तो ये वर्षे में मिलता है। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। दुनिया वाले भी ना, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, पर तो उनसे पूछो कि अगर आपकी आपके जीवन में कोई कमी नहीं है फिर भी आपको लगता है कि कोई कमी है, तो कहेंगे बस शांति चाहिए। और ये शांति सबकी मांगनी है, ऐसे नहीं एक धर्म की मांगनी है, सब धर्म वाले शांति मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं शांति में सब कुछ आ जाता है, सारे गुण आ जाते हैं। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? क्या है बताया अभी? नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। यही युक्ति है पवित्र बनने की। तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो, स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो क्या होता है? तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। कितना बड़ा प्रलोभन है ये। खाली एक जन्म पवित्र बनते हो और 21 जन्म आप पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो कि हम भाई बहन हो रहेंगे। दुनिया वाले तो इसी पर ही तो चिढ़ते हैं, हाँ भाई बहन बनाते हैं। परंतु बाबा कहते यही तो आधार है पवित्र जीवन बनाने का, यही आधार है पवित्र दुनिया स्थापन करने का। तो बाबा कहते हैं तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। हाँ सबने यही प्रतिज्ञा की है ना? बिल्कुल। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। कैसे फिर गया? गीत सुनने से नई दुनिया नया युग आया रे। तो जाग सजनिया जाग, नव युग आया रे। तो ये चक्र फिर गया बुद्धि में। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जानते हैं इसीलिए बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाना है। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है। क्या बताया शुरू में बाबा का? बाबा ने कहा तुम्हारा सारा मदार है साइलेंस पावर पर। इस पर ही आजकल बहुत क्लासेस भी चलते हैं, साइलेंस पावर क्या क्या कमाल करती है साइलेंस पावर। इस सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं। शांति देने वाला कहते हैं लेकिन शांति देता कौन है, वो है कौन? बाबा कहते कोई नहीं जानते। तो मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं और वो शांति धाम कैसे ले जाते हैं। तो शांति देंगे उसके पहले तो शांति धाम में जाएंगे ना। सच्ची शांति तो वही मिलती है, फिर सतयुग में शांति मिलती है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। बाबा ने कारण बताया क्यों स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि वो तो आदि में आते हैं। अब आदि में जो आए हैं तो सारे चक्र का ज्ञान कहाँ से होगा? अभी चक्र तो अभी शुरू ही हुआ है। जब पूरा चक्र फिरे तब तो पता चले ना सारे चक्र का, शुरू में कैसे पता चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके। कितना रात दिन का फर्क है। तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि सब तो नहीं इक्वली समझते ना, कोई ज्यादा समझेंगे इस चक्र को, कोई कम समझेंगे। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। चलो पूरा समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप को याद करना माना क्या अर्थ है इसका? बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना, क्योंकि वो शांति का सागर है, तो शांति के सागर को याद करेंगे तो शांति का वर्षा ऑटोमेटिकली मिलता है। शांति में सब आ जाता है, तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती है। हाँ, निरोगी स्वदर्शन चक्रधारी, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है उनमें। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं, नवयुग आया रे, ये बनाया तो मनुष्यों ने ही है। बाप बैठ सार समझाते हैं, वो है सभी आत्माओं का बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो, हरेक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। अब तो कहते हैं ना भाई ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची होगी तो जो रचना रची होगी तो एक ही माँ बाप के बच्चे होंगे ना, जब पहली रचना रची होगी तो हम ही वो पहली रचना है, तो भगवान ने हमें पहले पहले रचा है ब्रह्मा द्वारा, तो भाई बहन है, तो हरेक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो गए। ये बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई है, निराकार रूप में भाई भाई है। फिर तुमको कहता हूं, देते थे ये हर घर में होने चाहिए, एक त्रिमूर्ति गोला, दूसरा झाड़ और तीसरा लक्ष्मी नारायण, ये हर घर में होना चाहिए। इन पर समझा फिर गीता पाठशाला खोल दो, एक कमरा अलग बनाओ। चलो कोई कहेगा मैं सिटिंग रूम में, अपने लिविंग रूम में या बैठक में कैसे ये चित्र लगाऊं, लोग को तो समझ लोगों को। और घर में क्योंकि सब तो सेंटर पर नहीं जाएंगे तो अपने घर में प्रोग्राम रखते हैं, जो अच्छे रॉयल फैमिली वाले होते हैं वो अपने घर में रखते हैं प्रोग्राम, और वहां उनके सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं। तो घर घर में गीता पाठशाला माना, उस कमरे में चित्र लगे हुए हो तो जो भी आए उसको ज्ञान मिले। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे, टीचर दे देंगे, वो आकर सर्विस करके जाएगी, समय मुकरर करो, जो आसपास के लोगों को बुलाओ और वो टीचर सेंटर से आ जाएगी और वो उनका क्लास कराएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो घर में। हाँ है, कौन है जिनके घर में ये चित्र है, हाथ उठाओ। अच्छा, इतने समझाते भी हैं जो घर में आते हैं उनको, हाथ उठाएं वो फिर। हाँ, सब समझाते हैं, वेरी गुड। तो बाबा कहते हैं, तुम प्रदर्शनी खोल दो, भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं ना। लौकिक में घर में पूजा रखनी है, कुछ उद्घाटन है, कुछ है, कुछ भी है, मुहूर्त है, अभी खुद तो मंत्र जंत्र जानते नहीं है तो फिर एक ब्राह्मण को बुला लेते, भाई तुम पूजा भी करो और तुम जो मंत्र है वो उच्चारण भी करो। तो बुलाते तो तुम भी टीचर को बुला लो, अगर नहीं समझा सकते हो तो टीचर आ करके सेवा करेगी। तो बाबा कहते हैं, तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वो रोज आकर पूजा करते हैं, तुम भी मंगा सकते हो, ये है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा को और यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। तो बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, साइलेंस पावर को अनुभव करना मुश्किल नहीं है। कैसे? अंदर में पता है कि मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा का नेचुरल गुण ही शांति है। तो बाबा कहते हैं, आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। ऐसे नहीं शांति में बैठ जाएंगे, कर्म नहीं करना है, कर्म बिना तो नहीं रह सकते, शरीर है तो कर्म भी होंगे, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। तो बाप कहते हैं, अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अथवा ना, तो उनको पहले समझाओ, सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको भी महिमा गाते हैं, वह गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। तो बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तब ही बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। कोई कहते भगवान बीच में क्यों नहीं आते, बीच में आ जाते तो इतनी पतित बनती नहीं दुनिया। लेकिन नहीं, जब संपूर्ण पतित बन जाए तब बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। भगवान को तो अपने बच्चों को स्वर्ग का ही वर्षा देना चाहिए, सुख शांति सब हो, वो तो स्वर्ग हो जाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। शिव जयंती मनाते हैं, कल्प पहले जरूर शिव बाबा आया होगा तब तो मनाते हैं, और शिव बाबा ने नई रचना रची होगी ब्रह्मा द्वारा तो सब उस समय भाई बहन होंगे ना, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा की श्रीमत मिली, बच्चे दृष्टि पवित्र बनाओ, तो बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है, अभी तुम समझदार बने हो, बने ना सब समझदार बने हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब पता चल गया तो समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है। अब कोई कहे मैं भी भगवान तुम भी भगवान, तो उनको समझाओ, क्या समझाओ, तो तुम कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है, ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं। तो सब भगवान हो गए तो क्या सब सदगति दाता हो गए क्या, फिर दुर्गति में क्यों पड़े, तो ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं। सदगति दाता तो एक परमात्मा है, परंतु फिर समझते हैं बाबा भी क्या समझते, इतनी जो मत मतांतर है दुनिया में तो बाबा को क्या कहना पड़ता है, परंतु समझते ये ड्रामा का खेल है, इतनी मत मतांतर हो तब तो सूत मूंज जाए तब तो भगवान आकर के सूत को सुधारे ना, परंतु समझते हैं ये ड्रामा का खेल है। तो बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं हाँ स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है तो क्या करना है, अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो, इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। बाबा के ज्ञान देने का इतना महान पुण्य है, इससे बड़ा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। सब प्रकार के दान माने जाए, अन्नदान वस्त्रदान रक्तदान नेत्रदान भूदान, जाने कितने दान है, लेकिन सबसे बड़ा दान कहते हैं वो महादान। और महादान किसको कहते हैं, ज्ञान दान गुण दान शक्ति दान, ये सबसे बड़े दान माने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इन जैसा, किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो, क्यों बुलाया, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ, तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। वो पंडा बन के आता है घर ले जाने लिए, उनको बुलाते तो तुम भी उनके बच्चे पांडव बन जाते हो, पांडव माना ही पंडा, तुम भी तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वो है जिस्मानी पंडे, ये है हम सब कौन है रूहानी पंडे, वो जिस्मानी यात्रा पर ले जाते और तुम रूहानी यात्रा पर ले जाती हो, तो हम भी तो पंडे हुए ना। सत्युग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, सत्युग में कोई यात्राओं पर नहीं जाता, वहां तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, हाँ बाबा बार बार कहते समझदार बनते हो तुम, तो बाप के मत पर चलना चाहिए ना। कैसे बने समझदार, बाप की श्रीमत पर चलकर, तो समझदार बने हो तो बाप की मत पर चलते रहो ना, नहीं तो फिर बेसमझ कहलाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना, कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब वो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तो मेरे लाडले बच्चे हो ना, कितना प्यार से, जैसे माँ भी बच्चा कहना नहीं मानता है तो माँ क्या कहेगी, बेटा तो मेरे लाडले बच्चे हो ना, मेरा कहना मानो। तो बाबा भी कहते हैं तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक भी हो, खाली बच्चे नहीं हो, आशिक भी हो। आधा कल्प से उसको याद किया है, आशिक बनकर उस माशूक को। एक को ही एक के ढेर नाम रख दिए, सहस्त्र नाम कहते हैं शिव के, सहस्त्र नाम। सब कितने प्रकार के नाम शिव के रख दिए, कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूं तो एक ही ना, मैं एक ही हूं, लेकिन कितने नाम, लेकिन वो नाम कौन से हैं? सब बाबा कहते गुण और कर्तव्य वाचक नाम है। इतने ही मैंने कार्य किए हैं, इतने मेरे गुण है, उसके आधार पर ही ये मेरे नाम है, पर मेरा असली नाम तो शिव ही है। तो बाबा कहते कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं, मैं हूं तो एक ही ना, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, शिव बाबा कहते मैं आया था 5000 वर्ष पहले भारत में, बच्चों को एडॉप्ट किया था, अब भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे शिव बाबा के क्या बन गए, ब्रह्मा के तो बच्चे बन गए, तो शिव बाबा के हम क्या बन गए, ब्रह्मा के बच्चे होने कारण तुम पोतरे पोतरियां हो गए मेरे। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता है, यानी भाई को मिलेगा बहन को नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता, आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है। सबको हक है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो ये सब विनाश को पाना है। बात बीच बीच में बाबा फिर बेहद का वैराग्य भी दिलाते, नई दुनिया की याद भी दिलाते, वर्षा भी याद दिलाते, स्वर्ग भी याद दिलाते, फिर ये बेहद का वैराग्य भी दिलाते हैं। ये सब विनाश को पाना है, जो कुछ भी देख रहे हो। महाभारत लड़ाई की भी बरोबर है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो नॉलेज भी बेहद है, सब कुछ बेहद है, और क्या क्या बेहद है, तो त्याग भी बेहद का ही चाहिए। सब कुछ बेहद है, प्राप्ति भी बेहद है, तो त्याग भी उतना ही बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था, 5000 यज्ञ रचा था, फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। अश्वमेध यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, राजस्व अश्वमेध गीता ज्ञान यज्ञ से फिर वो विनाश ज्वाला प्रकट हुई, तो कलयुग का विनाश हुआ, फिर जरूर सतयुग की स्थापना हुई। बाबा कहते हैं फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की तो बात है, बहुत लंबी चौड़ी दूरी नहीं है, 5000 वर्ष की तो बात है। यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे, कहाँ के गेट खुले थे, हाँ घर के गेट और नई दुनिया के गेट, जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर के समझो स्वर्ग का द्वार खुल रहा है, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, अच्छा दूसरों को बुला सकते हो, आएंगे कोई आपके पास जो आपके पास आकर समझेंगे, तो दूसरे को बुला सकते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। गीता पाठशालाएं खोलिया, यहाँ भी बहुत होंगे जिनके घरों में गीता पाठशालाएं, यहाँ तो उठाओ जिनके घरों में गीता पाठशालाएं। देखो हमारी ओडिशा के भाई बहने आए हैं, खूब गीता पाठशालाएं बहुत खोली है ना, हाँ शकुंतला बहन, तो बाबा के सलोचना बहन, सॉरी तो देखो सलोचना बहन आई है कटक से इतनी बड़ी पार्टी लेकर, लेकिन कल आधी पार्टी आई, आज बाकी आधी आनी है, डायरेक्ट ट्रेन आज ही पहुंचेगी, तो इसलिए आज से ही भट्टी शुरू करेंगे। और इस भट्टी को कौन संभालेंगे, हमारी राधा बहन आई है, राधा बहन राधा बहन खास लखनऊ से आई है आप सबकी सेवा के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमलेश दीदी भी आई है, हिम्मत रख के कमलेश दीदी भी आ गई। हमने कहा दीदी आप भी आ गए तो बस, हाँ मधुबन खींच के लाया कमलेश दीदी को, सुन रही है कटक की लग कमलेश बहन। तो कल तो मैंने इनसे पूछा कि कितने आपके सेंटर्स हैं, कितनी गीता पाठशालाएं हैं, तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इनके ब्रांचेस चलते हैं और कितने वहाँ के भाई बहने समर्पित है मधुबन में। हाँ उड़ीसा के भाई बहने जो जी, हाँ बहुत इतने सारे और इतने समर्पित है, नीचे ऊपर सब जगह। तो बाबा कहते हैं तो फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि ने अच्छी रीति याद रखना चाहिए ना, हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ही देवता थे फिर चक्र लगाया, हम अभी ब्राह्मण बने हैं फिर विष्णुपुरी में जाएंगे, संगम पर ब्राह्मण बनते हैं फिर सतयुग में माना विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज परंतु कोटों में कोई निकलते हैं, प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, हम आएंगे ये भी कहते हैं, कोई विरले सात रोज का कोर्स उठाते हैं, सात रोज की भी बात अब क्या है, क्या बड़ी बात है, एक घंटा रोज देना है सात दिन क्या बड़ी बात है, तो सात रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी तो सात दिन रखते हैं ना, भक्ति मार्ग में बहुत रखते हैं गीता का पाठ रामायण का पाठ सात दिन तक तो रखते हैं ना, सात दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। और जब सात दिन की बात आती है ना तो फिर कहा जाता आगे क्या करना है, तो फिर हम क्या कहते हैं, अरे जीवन ही सात दिन का है, सोमवार से लेके रविवार तक ही सात दिन होते हैं, तो जीवन ही सात दिन का, एक दिन जन्म होता है एक दिन मरण होता है, तो सात दिनों में से एक दिन जन्म होगा एक दिन मरण, तो जीवन ही सात दिन का है, तभी क्या करना है, प्रश्न है क्या, चलाना है जीवन भर। तो बाबा कहते हैं तो सात रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है, कोई को तो सेकंड में भी तीर लग सकता है, सात दिन तक चले वो भी जरूरी नहीं है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे, दिखाते हैं ना अपना हक, जब हक भी लगाते हैं और फिर हिम्मत भी दिखाते हैं कि हम रेस कर बाप से वर्षा लेंगे ही। कई तो पुराने से भी तीखे चले जाते हैं, नए आते हैं और पुरानों से तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। अब जब दादियां थी शुरू में यज्ञ में तो कैसा इतना ज्ञान समझ में भी नहीं आता था, लेकिन धीरे 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 कैसे रिफाइंड होता गया है, तो दादियों ने तो वो दही किया और मक्खन बनाया विलोरा, अभी तो मक्खन खा रहे हैं, जो बाबा ने ज्ञान दिया वो मक्खन के रूप में दिया, इतना सहज समझ में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है, प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है, खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएंगे, प्रदर्शनी माना गीता पाठशाला खोली से वो चित्र लगा दिए तो कोई न कोई आएगा समझाएगा, रोज आकर कथा करके जाओ उनको कहो, रोज आकर कथा करके जाओ, 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो 1250 वर्ष चला, कितनी छोटी कहानी है, 5000 साल की कितनी छोटी कहानी है, हम सो देवता थे फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, कितनी छोटी कहानी है, हम आत्मा ब्राह्मण बनी, हम सो का अर्थ भी कितना युक्ति युक्त समझाते हैं, विराट रूप भी है परंतु उसने ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है, केवल देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाया, ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है, मुख्य किस बात में मेहनत करनी है, याद की मेहनत, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाना है, तो ये चिंतन खत्म करना है। हाँ, क्या चिंतन खत्म करना, एक ही चिंतन रहे, मुझे विकर्मा जीत बन पावन बनना है और नई दुनिया का मालिक बनना है। तो बाबा कहते बाकी और सब खत्म चिंतन। क्यों बाबा, कौन सा चिंतन कहते खत्म करो? ये चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है, कोई कुछ करता ये क्यों होता, ये क्यों करता, ये क्या करता, ये क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे। दादी गुलजार कहती है ये सब क क क क की भाषा कौवे की भाषा है, ये क्यों करता है, ये क्या। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा क्यों करता है, ये क्या करता है। तो इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दूसरे को देखो ही नहीं तो अपने को देखो। तो हमको एक ही चिंतन करना है कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो, बाबा की याद। कोई साथ टाइम वेस्ट न करो। बहुत कुछ अलग झूठ और बातें कुछ करता है, टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से तो डरना नहीं है, आते हैं मन में तूफान, डरना नहीं है। बहुत तकलीफें आएंगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा, इतना बूढ़ा बाबा, ये भी इतना ऊंच पद पा लेता है, हम क्यों नहीं बनेंगे? ये हर एक कहे अपने आप से, है ना। बुजुर्ग आते थे, बाबा हम कैसे इतना पुरुषार्थ करें? तो बाबा कहते अरे ये बूढ़ा बाबा कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? फिर जवान आते थे बाबा के पास, बाबा अभी तो हम जवान है, हम कैसे कर सकते हैं? तो बाबा मम्मा का मिसाल दे, मम्मा कितनी जवान है, वो कितना पुरुषार्थ कर रही है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, बाबा किसी को भी छोड़ते नहीं थे। तो बाबा कहते हैं हम, तो बाबा कहते हैं ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? ये भी पढ़ाई है ना, तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार ही नहीं। अब कोई बुजुर्ग कहे मैं क्या अभी किताबें पढ़ूंगा, हाँ मेरी आंखें भी कमजोर हो गई है। तो बाबा कहते ये बूढ़ा बाबा ने कौन से किताब उठाई, कुछ भी नहीं उठाया, और देखो कितना नंबर वन चला गया। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है, बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, 5000 साल की छोटी कहानी है, सेकंड की बात है, जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। तो मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। कितना उलहना देते हैं बाबा, विश्व का मालिक बनाता है वो और तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे, फिर क्या बहाना देते जो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। कहते बाबा सब थोड़ी राज महाराजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में ये फिक्र रखते हैं ना, ये फिक्र रखते हैं क्या? अब जिसको फर्स्ट नंबर आना है वो फिक्र रखेगा क्या कि अगर सारे फर्स्ट नंबर आ जाए तो? या तो कोई सोचे ये फर्स्ट नंबर कैसे आऊंगा, सब थोड़ी बनेंगे। तो बाबा कहते स्कूल में ये ओना रखते हैं क्या? जो होशियार स्टूडेंट होता है वो कभी नहीं चिंता करेगा कि अगर दूसरे भी आ गए तो फर्स्ट नंबर, नहीं मुझे फर्स्ट जाना है, मुझे जाना है। तो बाबा कहते हैं स्कूल में ये फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे पर मुझे पाना है, ये जरूर सोचते हैं। तो पढ़ने लग जाएंगे, बस स्कॉलरशिप लेनी है, पढ़ने लग जाएंगे। कई होते ना गरीब है, पैसा नहीं है, इतनी फीस नहीं भर सकते, तो और मेहनत करते, स्कॉलरशिप से पढ़ेंगे। तो स्कॉल फलाना तो इतना पैसा खर्च करके भी फेल हो गया और मैं स्कॉलरशिप से पढ़ा तो देखो कितना ऊंचा पद पा लिया। तो मेहनत करते ना, तो बाबा कहते हैं कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है ये क्या पद पाने वाला है। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जा सकता है ये क्या पद पाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। दूसरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन न चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। माया को अपना भक्त बनाओ। कैसे बनेगी माया भक्त, बाबा ने बताया। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए, मगन में कैसे हो, मगन कैसे होंगे जब लगन होगी, तो लगन से ही मगन होते ना। तो मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की रूहानी नशे की रचयिता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स, ये सब स्मृति में रखो। कई कहते ना व्यर्थ संकल्प आते, तो देखो बाबा ने उसका उत्तर दिया है। क्या उत्तर है? अनेक टाइटल्स का अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की रूहानी नशे की रचयिता रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो, जो आपकी पसंदी हो अपनी पसंदी अनुसार वो स्मृति में रखो। उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। पहले मनन करो, फिर लगन लग जाए, फिर मगन अवस्था अवश्य अनुभव होगी, फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी, संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। सुना, संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। मास्टर भगवान बनेंगे तो माया पहला भक्त बनेगी। स्लोगन, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। उच्चारण भी, हम जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं या नहीं, हाँ श्रेष्ठ बोलते हैं, हमारे मुख से बोल कैसे निकलते हैं वो भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा बाबा के मुख से कभी भी कड़वे शब्द कभी नहीं निकले, चाहे किसी के प्रति, चाहे कोई कैसा भी था, मीठे बच्चे मीठे बच्चे, बाबा बच्चे बच्चे मीठे बच्चे ही कहता था। तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहेंगे ब्रह्मा बाप समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, इस हेडिंग के अंतर्गत अव्यक्त इशारे है सारा महीना। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। तो याद सहज कैसे रहेगी, जब प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहेंगे। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया, काम भले कुछ भी करो लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। ये रूहानी नैन, ये रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। अच्छा, आज का मम्मा का विशेष, तो आज विशेष गुण पढ़ते हैं। आज 4 तारीख है। मम्मा कैसी थी? स्नेह और विश्वास के गुण द्वारा संगठन को एक सूत्र में पिरोने की शक्ति थी। मम्मा कैसे, इनको ना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं ना, तो मम्मा इसमें बहुत होशियार थी। समझो आपस में मतभेद है और कैसे वो सुलझाती थी। तो स्नेह और विश्वास के गुण द्वारा संगठन को एक सूत्र में पिरोने की शक्ति। मम्मा का सभी बच्चों प्रति अटूट निस्वार्थ स्नेह था। सबके प्रति विश्वास रख उन्हें हर क्षेत्र में योग्य बनाया। इसी गुण के आधार से पूरे संगठन को एक सूत्र में पिरोया। संगठन की शक्ति से असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया। ऐसे हम सभी भी अपने ईश्वरीय परिवार के प्रति स्नेह और विश्वास रखते हुए संगठन को एक सूत्र में पिरोकर बाप दादा का नाम रोशन करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज थोड़ी सूचना दे रहे हैं आपको, और एक बहन
अन्ना जी की तरफ से।
अरे बाबू, इसमें से पढ़ना है वो, फिर आप ही पढ़ो। वो हो जाए, एक मिनट आप सुनाओ। अच्छा, पहले तो और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फिर रवि भाई कुछ सुनाएंगे। सभी भाई बहने एवं बट्टी के भाई बहनों से नम्र निवेदन है, सबसे नम्र निवेदन है। पहली बात, वर्तमान समय पांडव भवन माउंट आबू में पानी की बहुत कमी है, इसलिए सभी पानी बहुत बहुत इकोनॉमी से यूज करें। ये खास मई और जून का महीना पानी की बहुत तंगी होती है। पानी बहुत दूर से टैंकरों द्वारा लाया जाता है, तब जाकर हमें पानी मिल रहा है। ऐसे नहीं समझे, बहुत सहज है यहाँ पानी मिलना, दूर दूर से लाते हैं टैंकरों द्वारा। अपनी दिनचर्या में स्नान करना, बर्तन धुलाई करना, कपड़े धुलाई करने के लिए कम से कम पानी उपयोग में लाएं। नल जहाँ भी आपको आप जहाँ भी आपका खुला दिखे कृपया बंद करें। भले, क्योंकि हो सकता है पानी नहीं आता हो, आप खुला ही छोड़ देंगे, फिर जब पानी आएगा तो बेहतर रहेगा, आप होंगे नहीं कमरे में, इसलिए कहीं भी खुला देखे बंद करें। तो ये विशेष पानी का टेंशन दिला रहे हैं। बाकी कुछ और सूचना है, रवि भाई सुनाइए।
आप सभी जानते हैं कि शांतिवन में अनेक विशेष कार्यक्रम की योजनाएं बनाते रहते हैं, और विशेष मृत्युंजय भाई के तरफ से समय प्रति समय मीटिंगों का आयोजन किया जाता है। अभी आने वाले कुछ दिनों में कुछ विशेष 2-3 कार्यक्रम करने का प्रावधान है। उस विषय पर एक शाम को मीटिंग रखी गई है। आज शाम को 6:30 बजे ट्रेनिंग सेंटर के हॉल नंबर 1 में शांतिवन में, और सभी मधुबन के सीनियर्स और विभिन्न विभागों के इंचार्ज, सभी प्रभागों के प्रमुख भाई बहनों के लिए विशेष मीटिंग आयोजित की गई है। इस मीटिंग में विशेष पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्ष वंदन अभियान की योजना की जानकारी देंगे। 5 जून से 25 जून तक ये कैंपेन की तरह चलेगा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है इसी महीने में, उसकी भी रूपरेखा तय करनी है, उसकी तैयारियां और विचार विमर्श करेंगे। तीसरा इस महीने में मातेश्वरी जी का पुण्य स्मृति दिवस भी आता है और इस बार मातेश्वरी जी को 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं अव्यक्त होकर के, तो उसका भी कुछ विशेष कार्य योजना के लिए एक प्रस्तावित है। तो जो भी अपने विचार अपने परामर्श देना चाहते हैं वह भी उसमें अवश्य दे। तो और भी कोई विशेष महत्वपूर्ण विषय आपकी जानकारी में हो तो जो भी आपके सुझाव है उसके लिए आमंत्रित है और मीटिंग के लिए भी निमंत्रण है।
कल है ना विश्व पर्यावरण दिवस
जी,
कल है, कल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। वैसे हाँ, वैसे भी मोदी जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम, बहुत सुंदर ये सब जगह चलाए भारत में। तो अभी एक छोटी एक कुमारी है,
कर्नाटक,
हाँ ये कर्नाटक की है और पूरी ड्रेस लेकर आई है, कहती है मैं मॉर्निंग क्लास में